जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभागिरिवरधारी जय गोपीजन गोपीजन वल्लभागिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्रूयते सुना जाता है जगह जग तत्र तत्र जगह जगह। ह निश्चय ही कर्म कर्म यत जो क्रियते किया जाता है प्रोक्तम जैसा कहा जा चुका है परोक्षम अज्ञात न प्रकाशयते प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कीजिए। वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के फल का भोग करता है किंतु व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका है, अतः उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। तात्पर्य नास्तिक लोग पूर्व कर्मों के फल का साक्ष्य चाहते हैं, अतः वे प्रश्न करते हैं कहाँ इसका प्रमाण है कि मैं विगत कर्मों के फलों को भोग रहा हूं। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्म फलों को अगले स्थूल शरीर तक पहुंचाता है। भले ही वर्तमान स्थूल शरीर नष्ट हो जाए किंतु सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, यह आत्मा को दूसरे शरीर तक ले जाता है। वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर निर्भर रहता है, अतः अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है। आत्मा तब तक सूक्ष्म शरीर द्वारा ले जाया जाता है जब तक वह स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। ओम ज्ञानम दिव्यानंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। वैसे मेरी पात्रता नहीं यहाँ बैठ के कुछ बोलने की, फिर भी जो सेवा दिया है उस सेवा करने के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ भगवान के बारे में बोल सकूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद मुनि जो है वो प्राचीन भरी जो राजा है उनको उपदेश कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप हो रहे हैं। और इस श्लोक में प्राचीन भरी राजा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि पूर्व कर्मों का फल जो है वो हमें अब भुगतना पड़ता है, लेकिन उनके मन में प्रश्न आता है कि पूर्व जन्म में मैंने जो भी कर्म किए हैं वो अलग शरीर ने किए थे और इस जन्म में मुझे अलग स्थूल शरीर है, तो ये कैसा संभव है कि एक शरीर कर्म करता है और दूसरा शरीर उसका भोग भोगता है। तो यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि स्थूल शरीर जो अगर बदला भी तो भी सूक्ष्म शरीर वही रहता है, वो चिरंतन है। तो जब भी स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये मन बुद्धि और अहंकार जो है वो वही रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर निर्भर रहता है, यानी असली कर्ता कौन है, सूक्ष्म शरीर है। इसलिए सभी भोग जो है, सभी यातनाएं पीड़ाएं या आनंद जो है वो सूक्ष्म शरीर उपभोग करता है, लेकिन जो जिनको ये कहना है कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मेरे मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, मैंने कुछ गलत किया नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कुछ किसी का भी बुरा किया नहीं है, फिर भी मेरे जीवन में क्यों बुरा हो रहा है, तो उसका ये उत्तर है। वो यही मतलब कंटेंशन करते हैं कि पिछले जन्म में मेरा अलग शरीर था, इस जन्म में अलग शरीर है। तो उनकी धारणा यह रहती है कि शरीर जो है वो कर्म करता है, इसलिए जो शरीर नष्ट हो गया उसके साथ कर्म भी नष्ट हो गया, और मैंने नया शरीर धारण किया मतलब मैंने नई शुरुआत की है, तो जिसमें कोई कर्म बंधन ये वो है ही नहीं। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता है, शास्त्र कहता है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो वही रहता है और जो भी कर्म है, कर्म बंधन है, वो सूक्ष्म शरीर आगे अगले जन्म में ले जाता है। ये ऐसा हुआ जैसे कोर्ट में कोई गुनहगार खड़ा है और कहता है कि जिस गुनहगार का आपने वर्णन किया उसने तो जीन्स पहनी थी, टी शर्ट पहना था, मैंने तो धोती कुर्ता पहना है, तो मैं कैसे गुनहगार हूं। तो सब लोग जानते हैं जो ज्ञाता है कि व्यक्ति वही है, कपड़ा बदल गया लेकिन व्यक्ति वही है, तो कपड़ा भी अगर बदला तो भी जो भी उसने कर्म किया था उसका कर्म फल उसको भुगतना पड़ता है। तो ये जो प्रश्न करने का जो प्रवृत्ति है कि जिसको अपराध करना है या कोई क्राइम करना है, पाप करना है, तो ऐसे अलग अलग फिलॉसफी को तोड़ मरोड़ के वो प्रश्न करते हैं। प्रभुपाद हमेशा ऐसे प्रश्न को बड़ा सरल उत्तर देते थे, सड़े तोड़ उत्तर देते थे। एक बार पाश्चात्य देश में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया और एक पाश्चात्य व्यक्ति युवक आया और प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद भगवान कौन है। तो तो प्रभुपाद ने उसको उसका ग्लोरिफिकेशन किया, उसको उसका उसको बिठाया, उसको बोला वाह वाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और उसको उत्तर दिया कैसे भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है वगैरह। और एक जगह पे प्रभुपाद गए, वहां पर एक भारतीय व्यक्ति आया और वो फिर से वही प्रश्न उसने पूछा, प्रभुपाद कृष्ण भगवान कौन है? तो प्रभुपाद ने उसको बहुत झाड़ा, बोले तुम भारतीय हो के तुम्हें पता नहीं है भगवान कौन है। तो इसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि जो प्रश्न होता है हम करते हैं वो विषय के अनुरूप होना चाहिए, विषय से अलग। या बहुत बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछने वाला उसको जो उत्तर चाहिए वो उत्तर जब तक आता नहीं तब तक सवाल पूछते जाता है क्योंकि उसको वो उत्तर जो है उसको जो चाहिए वही उत्तर जो वक्ता है उससे निकालना है, इसलिए ऐसा वो करता है। तो ये क्रिमिनल मेंटालिटी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वेद विदा वाद, वेदों के ज्ञाता, तो वेदों में कर्म फिलावसा मीमांसा दी गई है। तो कर्म जो फिलॉसफी है, कर्म तत्व ज्ञान, उसका एक नियम है, उसके कुछ सूत्र है। और हमें भगवद गीता और भागवतम में बहुत जगह पे इस कर्म सूत्रों या कर्म नियम मीमांसा का वर्णन मिलता है। तो यहां पर प्राचीन बरी जो राजा है वो संभ्रम में है, कंफ्यूज है कि कैसे मुझे ये सब भुगतना पड़ेगा। तो जब तक नारद मुनि का संग उनको प्राप्त नहीं हुआ तब तक उन्हें ये अनुभव नहीं हुआ या उनको ये साक्षात्कार नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि वो बहुत सारे उन्होंने यज्ञ किए थे और सभी यज्ञ उन्होंने वेदों के विधि विधानों को पालन करते हुए किए थे, लेकिन उनके जो आचार्य थे, गुरु थे, उन्होंने उनको थोड़ा गलत मार्गदर्शन किया जिससे उनको ये इस संभ्रमित अवस्था में आना पड़ा। तो इसलिए वहां यहां पर वो दो तीन श्लोकों के बीच पहले वो पूछते हैं नारद मुनि को कि ऐसे कैसे हुआ कि मेरे जो गुरु है, मेरे जो मार्गदर्शक है, उन्होंने मुझे ये पहले बताया नहीं कि मैं जो कर रहा हूं उसका कर्मफल मुझे भुगतना पड़ेगा। क्या उनको ज्ञात नहीं है ये चीज या जानबूझ के उन्होंने मुझे गलत समझा है? तो ये इसलिए यहां पर जो प्राचीन बरी राजा है वो थोड़ा कंफ्यूज है, संभ्रमित है, इसलिए वो स्वीकार कर रहा है कि मैं संभ्रमित हूं। तो जैसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति ये कबूल करता है, मान्य करता है कि वो संभ्रमित है या वो पापी है या ऑफेंस, उन्होंने बहुत सारे अपराध किए, तो ये उसका क्वालिफिकेशन है, ये उसकी पात्रता है कि वो उसका शुद्धिकरण हो। तो यहां पर इसलिए हम देख रहे हैं कि जो भ्रमित अवस्था जो है, कंफ्यूजन जो है प्राचीन बेरी राजा का, वही उसका उसकी पात्रता है कि वो नारद मुनि से अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करे। जैसे कहा जाता है कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है, अगर पेशेंट एडमिट नहीं करता है कि मुझे कुछ हुआ है, मुझे इधर यहां पर पेन हो रहा है, वहां पर दुख रहा है, तब तक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले पेशेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं बीमार हूं और मुझे इलाज की आवश्यकता है। तो वैसे ही यहां पर प्राचीन बड़े राजा एडमिट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं संभ्रम में हूं, इसलिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो वैसे हम देखते हैं कि राजा ने, प्राचीन बड़े राजा ने बहुत सारे यज्ञ किए थे, बहुत सारे विधि विधान जो वेदों में दिए वो पूर्ण किए थे, और एक ऐसा गौरवशाली उनका एक इमेज था समाज में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, कठिन है सभी नियमों का पालन करना। लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब सटीक तरीके से ये वेदों का या वेदों के आधार से यज्ञों का यज्ञ पूर्ण किए थे। लेकिन फिर भी अभी वो जो पहले आनंद वो लेते थे, वो आनंद अभी उनके चेहरे पे नहीं है। और ये जो नारद मुनि जो है, वो उनको वस्तु स्थिति जो है, हकीकत जो है, वो उनको बता रहे कि आपने अनावश्यक हिंसा की है यज्ञ के द्वारा, जो आवश्यक नहीं है। तो जो भी आपने पशुओं का वध किया है, वो सभी पशु अभी आपसे प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल है, वो आपसे बदला लेंगे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की, वो आपसे बदला लेने वाले हैं। तो भले ही आपने ये किया है, तो अगले जन्म में आपको वो बदला देंगे। तो यहां पर इसलिए प्राचीन बरी राजा जो है वो चिंतित है। तो उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता हो रही है। जैसे भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं, चौथे अध्याय में 17वां श्लोक है कि कर्मणोपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो एक कर्म का जो तत्व है, कर्मों का फिलॉसफी जो है, तत्व ज्ञान है, वो बहुत ही गहन है। गहन मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है, असंभव नहीं है, समझ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो कैसे भी कार्य करता है, उसका कार्य सिस्टमेटिकली होता है, लेकिन वो समझना बहुत ही मुश्किल है। गहना कर्मणों गति, गहन है। तो ये जो कर्मकांड का जो फल है, वो बहुत ही तीन प्रकार से वो कर्मकांड का फल हम देखते हैं, वो कर्म के हिसाब से है। तो हम इसी श्लोक में दिया गया है कि कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ऐसे तीन प्रकार के डिविजन्स, विभाग कर्म फिलोसफी में दिए गए हैं। हम एक्चुअली जनरली बोलते हैं कि एक व्यक्ति कर्मी है। तो कर्मी है मतलब क्या है कि वो कोई भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है जो रास्ते पे चल रहा है, जो नॉन डिवोटी है, मतलब भक्त नहीं है, उसको हम कर्मी कहते हैं। लेकिन कर्मी यहाँ पर अगर टेक्निकली हम देखने जाएं, तो कर्मी का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने सभी वेदों में वर्णित विधि विधानों का पालन किया है और उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया है, उसको कर्मी कहा जाता है। और विकर्मी हम सब जानते हैं, जिसने वेदो विधा, मतलब जो भी शास्त्र है उनके नियमों का पालन नहीं किया है, जिसने पाप किया है। और अकर्म का मतलब है जिसने भगवान की सेवा की है और भगवान की सेवा के लिए अपना जो कार्य है वो अर्पित किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो रिजल्ट है, जो फल है, वो अगर व्यक्ति लेता है उसका, तो वो कर्म या विकर्म हो जाता है। अगर वो फल लेता नहीं तो अकर्म हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान नवे अध्याय में भी कहते हैं कि जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, वो देव देवताओं के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपका नुकसान है। जैसे नवे अध्याय में कहते हैं, आप अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितरों की पूजा के लोकों में जाएंगे, और मेरी पूजा करेंगे तो मेरे लोक में आएंगे। यान्ति देवव्रता देवा पितृन यान्ति। तो एक सभ्य गृहस्थ होने के नाते, सभ्य व्यक्ति होने के नाते ये हरेक व्यक्ति का कर्तव्य है को कि वो जो भी कर्म करता है वो भगवान के लिए करे या भगवान के जो नियम दिए हुए उसका पालन करते हुए करे, तो ही वो सभ्य कहलाता है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जन्मना जायते शूद्र, व्यक्ति जन्मता है, जन्म लेता है तभी वो शूद्र होता है, संस्कार होता है उसके ऊपर और वो नियमों का पालन करता है तभी वो सभ्य कहलाता है। तो जो पशु रहते हैं उनको सभ्यता की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है, मतलब उनका प्रवृत्ति, नैसर्गिक प्रवृत्ति, उसके आधार से ही जीवन व्यतीत करते हैं और वही उनके लिए ठीक होता है। जैसे मछली है वो अपने माँ पिताजी जो भी है उनके उनसे तैरना सीखते हैं, पंछी उड़ना सीखते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे नेचुरल प्रवृत्ति जो है, नैसर्गिक प्रवृत्ति, उसके आधार से जी नहीं सकता है, वो असभ्य कहला जाएगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेदों में दिया हुआ ज्ञान है वो अर्जित करना पड़ेगा और उसके आधार से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। धर्मेण ही ना पशु भी समाना, अगर व्यक्ति को धर्म नहीं है, अगर उसे कोई कर्तव्य नहीं है तो वो एक पशु के समान है। तो आगे उसका हम वर्णन करेंगे। तो हम भागवत में भी देखते हैं कि भगवान कृष्णा जब गोवर्धन पूजा के समय इंद्र पूजा हो रही थी तो नंद महाराज से वो वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि आपको इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इंद्र और बाकी सब देवी देवता ये आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए बाध्य हैं, इसलिए उनको कोई भी स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल कुछ देने की आवश्यकता नहीं। उसके भी अलावा अतिरिक्त आप क्या कीजिए, भगवान की सेवा में ये यज्ञ अर्पित कीजिए, आप ये जो गोवर्धन है उसके संतुष्टि के लिए ये यज्ञ का जो सामग्री इकट्ठा किया है उसका उपयोग करें। तो यहां पर जैमिनी जो ऋषि है उनका ही फिलॉसफी, तत्वज्ञान कृष्ण यहां पर नंद महाराज को बता रहे हैं। तो जैमिनी ये व्यासदेव के प्रमुख शिष्यों में से एक है जिन्होंने कर्म मीमांसा सूत्र लिखा, जो ऐसे तत्वों का, तत्वों को विशद करता है जो एक कर्म के, कर्तव्य के हिसाब से सबको लेना चाहिए। जैसे वेदव्यास ने वेदांत सूत्र की रचना की और वेदांत सूत्र में पहले ही श्लोक में वो क्या कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्मादि यस्य यतः, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभी सृष्टि की निर्मिति करता है, उसका पालन करता है और उसका संहार भी करता है। तो वैसे ही ये जो जैमिनी ऋषि जो है उन्होंने भी जो कर्म मीमांसा ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने कहा अथा तो धर्म जिज्ञासा, हर एक व्यक्ति को धर्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उसके बारे में उसको जिज्ञासा करनी चाहिए। और अपने धर्म के हिसाब से जो भी अपनी जिम्मेदारियां है उसको उसने पालन करना चाहिए। तो यहां पर प्राचीन बरी राजा जो है वो वैसे तो उसने पूरे वेदों का जो नियम है उसका पालन किया था, वैदिक जो प्रमाण है उसका भी उसने पालन किया था। फिर भी उसको मन में ये सवाल है कि इतना सब कुछ इनफ, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी कुछ करना चाहिए। ये उसके मन में शंका आ जाती है जब वो नारद जी से संवाद करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को जब भी हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति से संग करते हैं, वैष्णवों से, तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे और क्या करना चाहिए, कौन सा सुधार मेरे जीवन में लाना चाहिए। तो व्यासदेव, यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यासदेव ने वेदों को अलग अलग मतलब रचना की, मतलब व्यासदेव ने वेदों की रचना नहीं की, वेद तो ओरिजिनल है, इवन भगवान ने भी वेदों की रचना नहीं की है। जैसे भगवान ओरिजिनल है, वैसे भी वेद भी ओरिजिनल है, जीवा भी ओरिजिनल है, ऐसे नहीं कि जीवात्माओं को भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी जो वेद व्यास जो है वो चिंतित है, हम देखते हैं भागवत में उसका वर्णन आता है कि वो उनको समाधान संतुष्टि नहीं है, इतना वेदों का उन्होंने जो चार वेदों को चार विभाग में उसने अलग अलग कर दिया अब विषय के अनुसार। तो वेद व्यास जानते थे कि कलयुग जब आएगा तब लोग बहुत ही मंद रहेंगे, जैसे भागवत में वो श्लोक है, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावसिन युगे जना मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रदा। तो कलयुग में सभी जीव कैसे रहेंगे, मंद रहेंगे, उनकी बुद्धि ज्यादा नहीं रहेंगी, आलसी रहेंगे, उपद्रता हमेशा त्रस्त रहेंगे और ज्यादा वो जिज्ञासा नहीं करेंगे। लोग आसान जो चीजें हैं वो करने में ज्यादा रुचि लेते हैं, कोई कठिन चीज है तो वो नहीं कर रहे हैं, ऐसी एक टेंडेंसी है। तो इसके ऊपर से इसकी वजह से क्या होते हैं कि व्यक्ति बहक जाता है, अपने मर्जी से जो भी उसका बर्ताव है वो करता है और इसकी वजह से वो गलत दिशा में जाता है, एकदम भौतिकवादी बन जाता है और अलग अलग अपराध करते बैठता है और एक फ्रूटिव टेंडेंसी उसमें पैदा हो जाती है, मतलब कर्मकांडी बन जाता है, उसके आगे हायर एजुकेशन कुछ उसको मिलता नहीं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वेद व्यास है वो इसलिए चिंतित है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो वेद जो थे पहले वो कैसे थे कि एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे ज्वेल्स हैं, रत्न हैं, लेकिन एक ही बक्से में वो रखे है, तो वो व्यक्ति जान नहीं पाता है कि मेरे पास क्या कितना है। तो वो क्या करता है, एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है जो विश्वास पात्र है और उसको कहता है कि आप इसको अलग अलग कर दो, जो माणिक है, पाचू है, उनको अलग 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 कर दीजिए, हीरा है। तो वो व्यक्ति जब अलग अलग करता है और उसका विश्लेषण होता है तब व्यक्ति जान पाता है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो वैसे ही ये जो वेद जो थे वो एक ही श्रुति थी, वो मतलब सुन के परंपरा से आते थे, वो लिखित स्वरूप में नहीं थे। तो इसलिए कलयुग के लोगों के लिए वेद व्यास ने क्या किए, उनको चार विभाग में उसका विश्लेषण किया है और फिर भी उनको संतुष्टि नहीं है। हम भागवत में देखते हैं कि नारद मुनि खुद वहां पर पहुंच जाते हैं। नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति है जब भी उनकी कहां पर जरूरत है वहां पर वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। फिर कोई भी प्रहलाद हो या ध्रुव महाराज हो या मृगारी हो, सब जगह वो प्रकट हो जाते हैं जब भी उनके शिष्यों को आवश्यकता है मार्गदर्शन की। तो ऐसे ही नारद मुनि यहां पर भी प्रकट हुए हैं और प्राचीन बरी राजा को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वेदव्यास जब ऐसे अंत असमाधानी थे तभी नारद मुनि वहां पर आए, उन्होंने बोला कि आपने कर्मकांड जो विभाग है उसके ऊपर बहुत सारा लिखाण किया है, लेकिन आपने भगवान के ग्लोरिफिकेशन मतलब गौरव के बारे में सफिशियंट मतलब जितना चाहिए उतना लिखा नहीं है, आपने ज्यादा लिखना चाहिए ताकि लोग भगवान से आकर्षित हो, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि वो भगवान की तरफ आकर्षित हो और भगवान की सेवा में लग जाए। तो इसलिए फिर वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना की जो बहुत ही निर्मल ऐसा एक ग्रंथ है जिसका वर्णन है निगम कल्पतरो और गलितम फलम शुक मुखा द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालायम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये भागवत जो है वो एक पके हुए फल के समान है जो रस से पूरा पूरा भरा हुआ है और अमृत के समान उसकी उसकी टेस्ट है, और वो शुकदेव गोस्वामी के पवित्र और शुद्ध मुख से प्रकट हो रहा है। तो इसलिए यहां पर जो वेदव्यास जो है वो भागवत की रचना करते हैं, और इस भागवत के आधार से हम देखते हैं कि जो लोग हैं कलयुग के खास करके जो मंद बुद्धि है जिनकी स्मरण शक्ति ज्यादा नहीं है वो अपना जीवन जो है वो यशस्वी कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो वेद है वो बहुत ही जटिल है, समझने में गहन है, और इसके लिए लोग जो है वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भागवतम की रचना हुई है, और भागवतम के आधार से व्यक्ति एक सभ्य व्यक्ति बन सकता है, एक अच्छा भक्त बन सकता है, और भक्ति से ही वो अपना जीवन सफल कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सब रेडीमेड प्रोग्राम दिया है, जैसे हम सुबह यहाँ पर मंदिर में आते हैं या घर पे भी अगर है तो हम भागवत का पठन करते हैं, और यही हमारा अंतिम गंतव्य है, हमारा ध्येय है कि हम कैसे भी करके जाने कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा करते हैं और वो हम करें। ऐसे बोला जाता है कि भागवत में 3200 अलग अलग व्यक्तियों का वर्णन है, और हाँ तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम सभी व्यक्ति का जितना व्यक्ति का हो सके उतना जो चरित्र है उसके बारे में कुछ पढ़े, और समहाउ कैसे भी करके हम भगवान से आकर्षित हों, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति है जिन्होंने अपना जीवन सफल किया है, और हम भी अपना जीवन श्रीमद् भागवत अगर को हम शरण जाते हैं तो सफल कर सकते हैं, और भागवत में ही ये सब उसका परिणाम दिया गया है कि कैसे आप भागवत को अगर शरण जाते हैं तो शृण्वताम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त ये भद्राणी विधुनोति सुदृढ़, हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की, या फिर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो भागवत में ही कहा गया है कि आपका जो भी शोक भय शोक मोह ये नष्ट हो जाएगा अगर आप भागवत को शरण जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्राचीन भरी राजा है वो नारद मुनि को शरण जाते हैं और खुले रूप से अपनी जो मन में जो शंका है वो प्रकट करते हैं, और इससे हम ये जान सकते हैं कि हम अगर अपना मन अगर किसी वरिष्ठ वैष्णव के सामने प्रकट करें तो हम भी हमारी चेतना शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पांच मिनट है कल, अब एक्चुअली था बहुत लेकिन सोचा टाइम हो गया। ऐसे भी कहा जाता है कि माया देवी जो है उसको एक विशिष्ट रोल दिया गया है। माया देवी को कभी भी जो जीवात्माएं हैं वो जो अपराध करते हैं वो पसंद नहीं है, तो वो हमेशा उनको त्रस्त करती रहती है, और जब तक वो अपने आप को त्रस्त या बीमार नहीं पाते तब तक वो त्रस्त करती रहती है ताकि वो भगवान को शरण जाए। लेकिन यही माया देवी का जो ये जो भौतिक जगत है उससे व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, तो जो जीव जो है वो ये भौतिक प्रकृति को देख के उसके साथ अपनी पहचान करना चालू कर देता है, वो अपने आप को भौतिक समझना चालू कर देता है, और यही कारण है कि वो जो भौतिक बंधन है उसमें फंस जाता है। लेकिन व्यासदेव जो है जब वो ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम समझ में आता है समस्या, और फिर वो श्रीमद् भागवतम का निर्मिति करते हैं, और उस श्रीमद् भागवतम में वो सभी जो कैतव धर्म है उसका निषेध करते हैं, और शुद्ध जो भक्ति है भगवान के प्रति उसका उसको प्राधान्य देते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपूर्ण श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में पहले से ही उपस्थित है, केवल वो सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। वो जागृत करने के लिए जो वातावरण है वो प्रभुपाद ने हमें दिया है, भागवत के रूप में ग्रंथ दिया है, ज्ञान दिया है। तो ये भागवत सुन के पढ़ के हम कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं हम खुद में, और हमारे जो मन में कलमश है उसको दूर कर सकते हैं। शुण्वताम स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण के उदयंतस्ते ही अभद्राणी, अभद्र जो भी है वो हम दूर कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर प्राचीन बरी राजा भी भ्रमित है, और वो हालांकि वो एक पुण्यवान व्यक्ति है, उसने बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन फिर भी वो उसको एक उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, केवल भौतिक जो शिक्षाएं हैं मटेरियल एजुकेशन वो व्यक्ति के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उसको हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो उच्च शिक्षा है आध्यात्मिक विद्या। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं विद्यायाम अध्यात्म विद्या विद्यायाम 10वें अध्याय में, कि मैं कौन हूं अध्यात्म विद्या, विद्या में अध्यात्म विद्या मैं हूं। तो इसे हम जान सकते हैं कि अध्यात्म विद्या जो है वो सर्वश्रेष्ठ है सभी विद्याओं में, और जब तक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म विद्या नहीं है तब तक वो कभी भी सभ्य नहीं बन सकता है, तब तक वो मनुष्य के स्तर पर भी आने के लिए पात्र नहीं होता है। तो इसलिए हम प्रभुपाद को धन्यवाद देते हैं कि प्रभुपाद ने हमें ये भागवत जो है वो रोज पढ़ने का सुनने का एक अवसर दिया है, जिससे कि हम हमारा जीवन यशस्वी कर सकते हैं और भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। एक बार भगवान के प्रति आकर्षण हो जाने के बाद व्यक्ति ये जो भौतिक आसक्तियां हैं उसमें कर्म बंधन में वो फंसता नहीं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे लिए भगवान के लिए पास प्रार्थना कीजिए कि मैं मेरे मन में भी भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण हो और मैं भी आपके जैसा अच्छा भक्तिपूर्ण सेवा करने का प्रयास करूं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।